एक गीत सौ अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियाँ। एक गीत सौ अफसाने।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।
एक गीत सौ अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। कबूल करें संज्ञा का नमस्कार। आज के अंक के लिए हमने चुना है फिल्म श्री 420 का गीत मेरा जूता है जापानी। मुकेश की आवाज, शैलेंद्र की रचना और शंकर जयकिशन का संगीत। देशभक्ति के अंडर करेंट वाले इस गीत में दरअसल गीतकार ने कैसा व्यंग रचा है, देश विदेश में किस तरह की शोहरत इस गाने को हासिल हुई, इस गीत के डुएट वर्जन के बारे में आप कितना जानते हैं, इस फिल्म से और कौन सी बॉलीवुड की फिल्में प्रेरित हुई और उनमें इस गीत से मिलते जुलते कौन से गीत बने, इस गीत का उल्लेख किन उपन्यासों और देश विदेश की फिल्मों में हुआ, ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है। आज इसका वाचन कर रही है प्रीति त्यागी और प्रस्तुति है संज्ञा टंडन की।
श्री 420 फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी मिली। 1955 में इसने 3.9 करोड़ रुपए का कारोबार किया, जो साल 2020 के 359 करोड़ के बराबर है। इस फिल्म ने उस साल 2 करोड़ रुपए का मुनाफा किया, जो 2020 के हिसाब से 184 करोड़ रुपए था। ये रिकॉर्ड इस फिल्म के 2 साल बाद बनने वाली फिल्म मदर इंडिया ने तोड़ा। 1956 में श्री 420 सोवियत संघ के सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई, जहां पर ये उस वर्ष की द्वितीय सर्वाधिक कामयाब फिल्म सिद्ध हुई और उपलब्ध जानकारी के अनुसार वहां के 35 मिलियन लोगों ने इस फिल्म को देखा। दोस्तों, ये तमाम आंकड़े और जानकारियां हमने बटोरी हैं मुख्यतः 2 किताबों से। ये दोनों किताब 2005 में इंडियाना यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा प्रकाशित की गई थी। पहली फिल्म है इंडियन फिल्म इन सोवियत सिनेमाज, द कल्चर ऑफ मूवी गोइंग आफ्टर स्टालिन, और दूसरी किताब है अ टेस्ट फॉर इंडियन फिल्म नेगोशिएटिंग कल्चरल बाउंड्रीज इन पोस्ट स्टालिनिस्ट सोवियत सोसाइटी। फिल्म श्री 420 की कहानी को आधार बनाकर 2 और हिंदी फिल्में बनी हैं और इन दोनों में ही मेरा जूता है जापानी वाले सिचुएशन के लिए 2 गीत भी बने हैं। इसमें पहली फिल्म है 1992 की राजू बन गया जेंटलमैन, जिसमें राज कपूर, नरगिस और नादिरा वाले किरदारों में क्रम से शाहरुख खान, जूही चावला और अमृता सिंह नजर आते हैं। राज इलाहाबाद से बम्बई आया था और यहाँ राजू दार्जिलिंग से मुंबई आता है। मुकेश, शंकर जयकिशन और शैलेंद्र की जगह ले लेते हैं कुमार सानू, जतिन ललित और देव कोहली। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने की छाया लेकर। दार्जिलिंग का राजू गाता है, दिल है मेरा दीवाना, यारो मैं तो चला, मेरी मंजिल दूर है पर जाना जरूर है, दोस्तों अलविदा। एक पत्रिका को दिए साक्षात्कार में गीतकार देव कोहली ने कविराज शैलेंद्र की शान में कहा कि उनका काव्य सरल और सहज हुआ करता था। कबीरदास के दोहों की तरह शैलेंद्र भी बहुत कम शब्दों में अभिव्यक्तियों का पूरा संसार रच डालते थे। राजू बन गया जेंटलमैन फिल्म के निर्देशक थे अजीज मिर्जा। इस फिल्म के 8 वर्ष बाद जब शाहरुख खान ने मेरा जूता है जापानी गीत के मुखड़े के अंतिम वाक्यांश को शीर्षक लेकर अपनी वर्ष 2000 की फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी बनाई, तो उसमें भी अजीज मिर्जा को निर्देशक चुना। श्री 420 की तरह राजू बन गया जेंटलमैन फिल्म को भी भारी कामयाबी मिली और ये साबित हो गया कि ख्वाजा अहमद अब्बास की लिखी ये मूल कहानी एक टेस्टेड और प्रूवन फार्मूला है हिंदी फिल्मों के सफल होने का। शायद इसी उम्मीद से वर्ष 2001 में गोल्डी बहल ने बस इतना सा ख्वाब है फिल्म बनाने की योजना बनाई। अब की बार तो फिल्म के शीर्षक में ही कहानी का सार आ गया। अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी और सुष्मिता सेन उन तीन किरदारों में नजर आए, लेकिन इस बार फॉर्मूला फेल हो गया, फिल्म पिट गई। और इस फिल्म के कुछ गाने ज़रूर हिट हुए, जैसे कि ये हवाएं जुल्फों में तेरी गुम हो जाएं, कुछ ऐसा जहां हम बनाएं और छोटा सा मन है मन में सनम है, लेकिन मेरा जूता है जापानी गीत वाले सिचुएशन पर इस फिल्म में जो गीत रखा गया वो गीत लोगों के ध्यान में नहीं आ पाया। इस फिल्म के सभी गीत गोल्डी बहल के लिखे हुए हैं, सिवाय इस एक गीत के जिसे लिखा है निदा फाजली ने। सोनू निगम की आवाज़ में ये गीत है, हे गंगा मैया तू जाना हमें नहीं रे, सारी धरती सारा अंबर गंगा जी के नाम, दिल में मेरे राम सबको मेरा सलाम। आगे गीत के अंतरों में फिल्म के नायक सूरज के बनारस से बंबई जाकर सपने पूरा करने की चाह की ओर संकेत है। दोस्तों वापस आते हैं मेरा जूता है जापानी गीत पर। इस गीत का उल्लेख कई उपन्यासों गीतों फिल्मों में समय समय पर होता आया है। आइए कुछ महत्वपूर्ण उल्लेखों के बारे में आपको बताएं। 1988 में सलमान रुश्दी की उपन्यास द टैनिक वर्सेस प्रकाशित हुई थी। उपन्यास के शुरू में ही जिब्रिल फरिश्ता नामक चरित्र द्वारा इस गीत के मुखड़े के बोलों के अंग्रेजी अनुवाद गाए जाने का उल्लेख मिलता है, जब जिब्रिल एक हवाई जहाज से नीचे गिर रहा होता है। फिल्म स्लम डॉग मिलियनर के जय हो और हाल ही का नाटो नाटो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भले इन दो गीतों को सर्वाधिक स्वीकृति मिली हो, पर जिस गीत ने सबसे पहले दुनिया के कई भागों में न केवल अपनी पहचान बनाई बल्कि हिंदी फिल्म गीत संगीत की एक छवि दुनिया के सामने प्रस्तुत की, वो गीत था 1955 की राज कपूर की फिल्म श्री 420 का मेरा जूता है जापानी। शैलेंद्र के लिखे, शंकर जयकिशन के संगीत से सजे और मुकेश के गाए इस गीत को देश विदेश में खूब सुना और सराहा गया, और बिना का गीतमाला के वार्षिक कार्यक्रम में यह शिखर का गीत बना, यानी कि साल का सर्वाधिक लोकप्रिय गीत। इस गीत में एक देशभक्ति का अंडरकरंट मौजूद है, भले यह गीत स्वाधीनता के 8 वर्ष बाद बना हो। एक नए जमाने के आधुनिक देशभक्ति गीत के रूप में इसे लोगों ने हाथों हाथ ग्रहण किया। जैसा कि भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपनी स्थिति प्राप्त कर रहा था, इस गीत ने उपनिवेशवादी जुए को दूर करने और भारत और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए एकजुट होने के अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य की मान्यता को दर्शाया। यह गीत कुछ राजनीतिक नेताओं और नव स्वतंत्र भारत के समृद्ध उच्च वर्ग पर भी एक व्यंगात्मक प्रतिशोध था, जो अपने कपड़ों में स्वदेशी होने का दावा तो करते थे लेकिन उनके विचार दृष्टिकोण संबद्धता और कार्यों में वो बेहद पश्चिमी थे। कम्युनिस्ट पंथी सोवियत संघ में इस गीत को खासा पसंद किया गया। राज कपूर वहां अत्यंत लोकप्रिय तो थे ही, इस गीत ने उन्हें रूसी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बैठा दिया। सर पे लाल टोपी रूसी वाला जुमला अपना काम कर गया। फिल्म श्री 420 की कहानी राजू नामक युवक की कहानी है, जो इलाहाबाद के एक छोटे से कस्बे से निकलकर पैदल बंबई की ओर रवाना होता है, आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना लेकर। और इसी पैदल यात्रा के सिचुएशन पर बना है यह कालजयी गीत मेरा जूता है जापानी। ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। चार्ली चैपलिन स्टाइल में राज कपूर उनके हाथ में डंडा और डंडे के आखिरी छोर पर बंधी हुई गठरी, और ऐसे में वो निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने। बंबई पहुंचकर सीधा साधा राज गलत संगत में पड़ जाता है, लोगों को धोखा देता है, पैसों का हेर फेर करता है। विद्या यानी नरगिस से उसे प्यार हो जाता है। उधर अमीर व्यवसायी सेठ सोनाचंद और उनकी बेटी माया यानी कि नादिरा उसे सम्मोहित कर उसे गलत रास्ते पर धकेल देते हैं। इन्हीं चरित्रों के इर्द गिर्द घूमती है श्री 420 फिल्म की कहानी। अंत में राज सभी गुनाहों से आजाद हो जाता है और सोना चंद को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। फिल्म का शुभ समापन होता है और राज और विद्या द्वारा एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हुए जिसमें दोनों गा उठते हैं, जी हाँ यही गीत मेरा जूता है जापानी। और इस बार तो मुकेश के साथ लता मंगेशकर भी अपनी आवाज मिलाती हैं। इस संस्करण की अवधि 1.5 मिनट की है जिसके पहले 1 मिनट में निकल पड़े हैं खुली सड़क पर। अंतरे से शुरू कर मुखड़े तक दोनों गायक बारी बारी से गाते हुए पहुंचते हैं और पार्श्व में कोरस भी शामिल है और आखिर के 3 सेकंड्स में लता जी का सुरीला आलाप है जो खत्म होता है शास्त्रीय अंदाज में, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी गाते हुए। और यहीं पर पर्दे पर द एंड लिखा हुआ आ जाता है। 1991 में बनी मीरा नायर की फिल्म मिसिसिपी मसाला साल 1972 में उगांडा से एशियाई मूल के लोगों को निष्कासित किए जाने की घटना पर आधारित थी। फिल्म के गंभीर मोड़ पर मेरा जूता है जापानी गीत की शुरुआती पंक्तियां सुनने को मिलती हैं। बांग्ला की प्रसिद्ध लेखिका महाश्वेता देवी वर्ष 2006 में जब जर्मनी के फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेले को संबोधित करने गई तब अपने भाषण में उन्होंने शैलेंद्र के इस गीत के बोलों को कोट करते हुए कहा, ये वाकई वह दौर है जहां जूता जापानी है, पतलून इंग्लिशतानी है और टोपी रूसी है, लेकिन दिल हमेशा हिंदुस्तानी था, है और रहेगा। मेरा वतन खायल है, आहत है पर गर्वित है, सुंदर है, गर्म और आद्र भी है, कहीं ठंडा है कहीं रेतीला है, मेरा चमकता हुआ भारत है, मेरा देश है। इसी साल किरण देसाई के उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस में भारतीय अप्रवासी बिजू अमेरिका जाकर अपने भारतीय दोस्तों और सहकर्मियों के साथ बैठकर मेरा जूता है जापानी गीत में सुकून का अनुभव करता है। वर्ष 2009 की भारतीय अमेरिकी फिल्म टुडे स्पेशल में आसिफ मांडवी और नसीरुद्दीन शाह ने अभिनय किया था। इसमें नसीरुद्दीन शाह द्वारा निभाए किरदार द्वारा अपनी गाड़ी के रेडियो पर मेरा जूता है जापानी गीत बजाते हुए देखा गया। 2012 में शाशा डिच और डीजे रिको बर्नस्कोनी ने अपने रिमिक्स एल्बम बुद्धा बार 14 के संकलन में मेरा जूता है जापानी को उसके मूल स्वरूप में ही स्थान दिया। साल 2013 की हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म ग्रेविटी की कहानी कुछ ऐसी थी कि एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाते हैं लेकिन अपनी धुरी पर चक्कर काटते समय स्पेस शटल में खराबी आ जाती है और फिर किस तरह से सारे एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी वापस लौटते हैं, यही है इस फिल्म की कहानी। उन एस्ट्रोनॉट्स में एक भारतीय एस्ट्रोनॉट शरीफ भी है जो स्पेस स्टेशन में फुर्सत के कुछ पलों में मेरा जूता है जापानी गीत गाकर अपने सहकर्मियों का मनोरंजन करता है। और वर्ष 2016 की मशहूर अमेरिकी फिल्म डेडपूल के पहले सीन में ही एक गाड़ी के डैक पर बजता सुनाई दे जाता है, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी। दोस्तों, ये तमाम बातें सिर्फ इसी बात की ओर इशारा करती हैं कि आज इस गीत के बनने के 68 साल बाद भी इसकी सार्थकता बरकरार है, आज भी ये उतना ही प्रासंगिक है और यही है गीतकार शैलेंद्र की लेखनी का कमाल। तो आज बस इतना ही दीजिए एक गीत सो अफसाने से हमें इजाजत। अगले हफ्ते फिर किसी और गीत से जुड़ी दिलचस्प बातों को समेट कर हम हाजिर होंगे। तब तक सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।
और इसी के साथ खत्म होती है आज के इस महत्वपूर्ण गीत की कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। शोध और आलेख सुजॉय चटर्जी का था जिसका वाचन किया प्रीति त्यागी ने और प्रस्तुति थी संज्ञा टंडन की। हम फिर आएंगे आपके पास एक और गीत की कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।
एक गीत सो अफसाने।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।